नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। ये उद्बोधन रक्षाबंधन के अवसर पर दिया गया था और इसका शीर्षक है प्रायश्चित का पर्व। आमतौर पर तो हम रक्षाबंधन को बहन भाई के स्नेह या सामाजिक मेल जोल के पर्व की तरह ही देखते हैं, है ना? लेकिन वंदनीय माता जी के शब्दों में एक अलग ही गहराई है, एक अलग दृष्टि है। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, उनके विचार अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और ये शीर्षक ही प्रायश्चित का पर्व, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
हाँ, यही बात है। सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि रक्षाबंधन को प्रायश्चित का पर्व कहने का उनका क्या मतलब है? ये तो सामान्य सोच से बिल्कुल अलग है।
जी, उनका कहना है कि ये पर्व असल में एक अवसर है, एक मौका है रुककर अपने अंदर झांकने का कि पिछले एक साल में जाने अनजाने हमसे क्या भूले हुई, क्या कमियां रह गईं, कौन से ऐसे दोष या दुर्गुण हैं जो हमें पनप गए।
अच्छा, मतलब एक तरह का आत्मनिरीक्षण।
हाँ बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, और सिर्फ पहचानना नहीं बल्कि ये संकल्प लेना कि हम इन्हें दोहराएंगे नहीं। तो ये उत्सव के साथ साथ अपने आप को सुधारने का, शुद्ध करने का पर्व है।
और इसी शुद्धि के लिए शायद उन्होंने वो 10 स्नान और यज्ञोपवीत बदलने की बात कही है, उद्बोधन में इसका जिक्र है।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये प्रतीक है। 10 स्नान वो बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है, और यज्ञोपवीत बदलना, वो पवित्र धागा है ना, उसे बदलना सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने पुराने अहं को, अपनी पुरानी गलत आदतों को, मतलब पुराने संस्कारों को त्याग रहे हैं और एक नई, ज्यादा शुद्ध, ज्यादा संकल्पवान शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आत्म सुधार की तैयारी है।
तो प्रायश्चित, शुद्धि, नई शुरुआत, ये सब जुड़ा हुआ है। उन्होंने इसे चिंतन और मनन का पर्व और दोषों को धोने का पर्व भी कहा है और दीक्षा के बारे में भी बताया है। ये कैसे जुड़ते हैं सब?
देखिए, ये सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, शांत बैठकर सोचेंगे नहीं, तो अपने दोषों को पहचानेंगे कैसे?
सही बात है।
और जब पहचान लेंगे तभी तो उन्हें धोने का यानी दूर करने का संकल्प ले पाएंगे।
यहीं पर दीक्षा का महत्व आता है। दीक्षा का मतलब है उस परम सत्ता से, उस गुरु शक्ति से जुड़ जाना जो हमारी प्रेरणा का स्रोत है, उसके प्रकाश को पाना ताकि हमारे अंदर इतनी शक्ति आए, इतना विवेक जागे कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें निकाल फेंकें।
अच्छा, तो दीक्षा वो अंदरूनी ताकत देती है आत्म सुधार के लिए।
अब अगर हम रक्षा सूत्र की बात करें, जो इस पर्व का मुख्य बाहरी प्रतीक है, उसे वंदनीय माता जी कैसे देखती हैं? आमतौर पर बहन भाई को बांधती है।
जी, लेकिन वंदनीय माता जी इसे सिर्फ एक धागे के लेन देन से कहीं ज्यादा मानती हैं। वो इसे जिम्मेदारी के पर्व के रूप में देखती हैं। जैसे पुराने जमाने में गुरु जब शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते थे,
हाँ,
तो वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं होता था, वो एक तरह का आश्वासन होता था कि गुरु शिष्य की आध्यात्मिक रक्षा का और कभी कभी तो भौतिक रक्षा का भी भार ले रहे हैं। तो ये सूत्र एक संकल्प है, एक जिम्मेदारी स्वीकार करना है, चाहे वो बहन की भाई के प्रति हो, गुरु की शिष्य के प्रति, या हमारी खुद की अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति।
वाह, ये तो रक्षा सूत्र को एक बहुत गहरा अर्थ देता है, जिम्मेदारी का प्रतीक। और ये सब करने के लिए प्रायश्चित हो, संकल्प हो, जिम्मेदारी निभाना हो, वंदनीय माता जी ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर बहुत जोर दिया है। क्या इनके बिना सब अधूरा है?
बिल्कुल अधूरा है। वो साफ कहती हैं कि अगर आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है तो कोई भी पूजा, अनुष्ठान या तक के प्रायश्चित भी सिर्फ एक बाहरी दिखावा बनकर रह जाता है। जैसे वो कहती है ना, सिर्फ माला फेरने से क्या होगा, मन का फेरना जरूरी है।
मन का फेरना बहुत सुंदर।
हाँ, मतलब दिल से जुड़ना, सच्ची भावना से, प्रेम से परमात्मा को या गुरु को याद करना, सिर्फ अपनी कामनाएं पूरी करवाने के लिए नहीं, हृदय का जुड़ाव, और साथ में पुरुषार्थ, मतलब खुद कोशिश करना अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास को जगाने की, मजबूत करने की, इसी से स्थायी लाभ मिलता है।
और एक सच्चे भक्त का या संत का हृदय कैसा होना चाहिए, इस पे भी उन्होंने कुछ रोशनी डाली है।
जी हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं उन्होंने। एक तो कहा, संत हृदय नवनीत समाना,
मक्खन जैसा।
हाँ, ताजे मक्खन जैसा कोमल, जैसे मक्खन थोड़ी सी भी गर्मी पाकर पिघल जाता है, वैसे ही संत का दिल दूसरों का दुख देखकर तुरंत पिघल जाता है, करुणा से भर जाता है, जैसे वाल्मीकि ऋषि का हुआ था जब उन्होंने क्रौंच पक्षी को मरते देखा था। दूसरी बात, भक्त को अहंकार से दूर शीतल और विनम्र होना चाहिए, जैसे भगवान शंकर। संसार का भला करने के लिए विष पी लिया, लेकिन खुद शांत रहें, कल्याण करने वाले बने रहें।
और कोई प्रतीक?
हाँ, माँ गायत्री का वाहन हंस। हंस को नीर क्षीर विवेक का प्रतीक मानते हैं, मतलब वो दूध और पानी मिले हों तो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है।
हाँ, ये सुना है।
तो भक्त का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, निर्मल, पवित्र और विवेकशील, सही गलत सत्य असत्य का भेद समझकर अच्छाई को अपनाने वाला।
अद्भुत। तो मतलब वंदनीय माता जी के अनुसार रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अवसर है। आत्मनिरीक्षण, शुद्धि, संकल्प, जिम्मेदारी, आस्था, करुणा, विवेक, इन सबको साधने का पर्व।
बिल्कुल सही कहा आपने। यह पर्व हमें अपनी कमियों को देखकर, उन पर काम करके एक बेहतर इंसान, एक बेहतर साधक बनने की प्रेरणा देता है। और अंत में शायद यही सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि इस पर्व से जो प्रेरणा मिली, जो आत्ममंथन हुआ, उसे हम अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें, कैसे वो हंस जैसा विवेकशील और पवित्र जीवन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमेशा जी सकें।
बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।